Market Hunter. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dank and with me is my co-anchor Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taza ank ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jayza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par, khabron ki barikiyon par bhi charcha karenge aur is par charcha karne ke liye hamare saath studio mein uplabdh hain economic analyst Udayan Ray. Udayan, bahut swagat aapka Market Mantra mein. And now let's begin Market Mantra with the headlines in English first.
Yes, let's begin. Domestic stock indices trade firm. Sensex gains 378 points to 80,803. Nifty adds 126 points to 24,699. Gross foreign direct investment surges by 26.4% in April-June 2024, says RBI's monthly bulletin. And Moody's expects Indian companies to allocate $45 to $50 billion for capital expenditure for the next 2 years.
भारतीय शेयर बाजारों में आज भारी उछाल रहा. सेंसेक्स 378 अंक तो निफ्टी 126 अंक बढ़ा. आरबीआई के मुताबिक अप्रैल से जून की तिमाही में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 26.4% बढ़ा है. और मूडीज का मानना है कि भारतीय कंपनियां अगले 2 वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर अपने विस्तार और आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने पर खर्च करेंगी. भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों ने एक बार फिर बड़ी दिलचस्पी दिखाई है. खरीदारी का दौर लगातार जारी है और इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों आधा आधा प्रतिशत बढ़े हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 378 अंक बढ़ा, 80,803 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी में भी 126 अंक की बढ़त दर्ज की गई और यह 24,699 पर बंद हुआ. एनएसई में 157 कंपनियां अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर रही हैं, जबकि 12 कंपनियों ने पिछले 52 सप्ताह यानी एक साल के न्यूनतम स्तर को छुआ है. बात करें बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप की तो मिड कैप सूचकांक में लगभग 1% की बढ़ोतरी आज रही और स्मॉल कैप में भी आधा प्रतिशत से अधिक का उछाल देखने को मिला है. बाकी विस्तारित रिपोर्ट के साथ लालिमा.
Thank you, Harsh. Yes, the stocks in detail now. Domestic stock indices, Sensex and Nifty, registered again around 0.5% in a high tide trading session. At the closing bell, the BSE Sensex closed 378 points or 0.47% higher at 80,803. NSE Nifty up by 126 points or 0.51% to close at 24,699. In NSE, 157 companies hit their 52-week high, 12 hit their 52-week low. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose nearly 1%. The small-cap indices gained above 0.5%. In the Sensex index, 14 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Bajaj Finserv, more than 3%, Indus Inbank and Tech Mahindra, more than 2%, and Bajaj Finance, more than 1.5%. Conversely, the major laggards were Bharti Airtel, more than nearly 1.5%, ITC around 0.5%, and Adani Ports and JSW Steel, more than 0.2%. In sectoral indices at the BSE, 18 sectors logged gains, while capital goods and FMCG landed in flat territory with thin losses. Financial services and utilities registered more than 1% and 1% gains. Bankex and Power logged nearly 1% up. The overall market breadth at the BSE was positive. Out of 4,036 companies, shares of 2,371 companies advanced, 1,561 declined, and 104 remain unchanged. So with all those statistics in place, Udayan, what do you have to say with the Sensex closing at 378 points higher at 80,803? Good for investor confidence, good for any citizen's confidence.
Yeah, I would say so. As they say, stock markets are part of what they call lead indicators. So they're giving you an advanced signal of what's probably going to come. But stock markets are also subject to animal spirits, as they call it. So people feel optimistic about something. But when stock markets are doing well, then by default, it's very tempting to conclude that people are feeling optimistic because they're taking risk. Stocks are higher risk investments, and they tend to reward you in the future. So that means you're taking risks with your money so that you get rewarded in the future. So you're optimistic about the future. So that's one part of the answer. The other important part, Lalima, is of course this, that bear in mind, this is also the month where foreign institutional investors have taken out money from India.
Yes.
Okay, so yes. It was in the headline. So maybe it's come back and that has happened. But all this is happening despite, so it's showing a remarkable resilience. And there are many people who are saying that this is the last bull market that is standing. Broad-based bull market, broad-based. So if you look at the markets in the US or some of the other places, it's a tech, some select tech stocks which are doing well, which are propelling the market forward. In our case, that's not the case. It's very broad-based. And what is also heartening is a lot of retail money, people who are not institutional investors, but Indian investors, who are actually decided to put in money in the markets, either through mutual funds or straight away into stocks. Now that is a very big difference. You know, in the past, it used to be the foreign investors who would come in and play a role here, because Indians seem to be optimistic. That's the first part of the answer. Therefore, they're taking the risk, and therefore there is a higher demand for stocks. And therefore, it never, even if it corrects, it never goes down enough. So it just keeps scaling new highs. And it's been the story for the last couple of years.
There have been indications of some people have been trying to shake up. Some factors have been trying to shake up this robust mechanism of the stock markets. But the fact that the markets have showed their resilience is also because they're now dependent more on domestic factors rather than the other cues, international cues. Is that the reason? Because we are, our fundamentals are very strong. We are grounded.
The counterbalancing force is very formidable now. So when so many Indians are coming in and investing in the markets, that counterbalancing is happening. So for every foreigner or every foreign institution which is wants to move over to another market to make a quick buck, there is an Indian. Or there are 100 or maybe 1,000 retail investors who are feeling confident. So either it's directly coming in or it's coming through mutual funds and ETFs and even some of the money of institutional, say, something like maybe a provident fund, some incremental small amounts of money come in out there just to shore up the returns. So all these, even insurance companies, certain kinds of plans, their money comes into the market. So there's a lot of Indian money coming in, and just in case people are not feeling excited, people from abroad, there are enough Indians who are saying that, okay, our vote goes for our markets and our, the future of the country.
Right.
बिल्कुल उदयन, अगर पूरे मार्केट सिनेरियो को देखें या ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो इंडियन मार्केट को ग्लोबल क्यूज भी अफेक्ट कर रहे हैं. जैसे पिछले समय हमने देखा कि कैरी ट्रेड की वजह से जापान के अचानक मार्केट में गिरावट हुई थी, पूरे ग्लोबल मार्केट में गिरावट हुई थी, लेकिन भारतीय बाजार बहुत जल्दी संभल गए. और जैसा कि आप बता रहे थे कि एफआईआईज के द्वारा निकाले जाने के बावजूद जो हमारे रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक डीआईआईज हैं, उनकी वजह से मार्केट बहुत संभला हुआ है. लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्लोबल क्यूज और खास करके सितंबर के महीने में जो यूएस फेड की बैठक होने वाली है उसमें एक बार फिर रेट कट को लेकर यह है कि जर्मी पावेल हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट तक तो कर ही दें रेट कट, उसको लेकर भी मार्केट में एक उत्साह सा बना हुआ है कि अभी यहां पैसे लगा कर रखें?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इट कट्स बोथ वेज, तो उसमें आप शुक्रवार को अभी फेडरल रिजर्व की एक मीटिंग हो रही जैक्सन होल वायोमिंग अमेरिका में यूएस में, तो ये उम्मीद की जा रही कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल जो है शुक्रवार को कुछ बयान देंगे, कुछ लेक्चर या स्पीच देंगे, तो वहां से काफी कुछ निकालने की कोशिश की जा रही कि कुछ आइडिया मिल जाए कि किस तरफ इंटरेस्ट रेट्स वहां पे उनका किस टाइप का पॉस्चर रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमरीकी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां से जो निवेश होता है उनके इंस्टीट्यूशन जो निवेश करते हैं वो ग्लोबल मार्केट्स को मूव करते हैं। तो मार्केट्स का ये मानना है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, वो ये मान के चल रहे हैं कि सेप्टेम्बर में एक रेट कट होना जरूरी है, क्योंकि जिस टाइप की सॉफ्टनिंग हो रही है अमरीकी इकोनॉमी में ये उसको जस्टिफाई करता है। अगर वो नहीं होता है तो या आप जेरोम पावेल की स्पीच में जैसे ये जो शुक्रवार को स्पीच आएगी तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट अगले कुछ दिनों में आ रहा है जो मार्केट्स को डिटरमिन करेगा। तो अगर वो मार्केट्स ये मान के चलने के वहां पर एक रेट कट होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो एक एडवर्स रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और उससे भारतीय मार्केट्स अछूते नहीं रह सकते। तो इस हिसाब से आपने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया,
और आपने बात की जर्मी पावेल की और जैक्सन होल की। हमारे कई श्रोताओं के अक्सर वो मैसेजेज या फोन पर वो पूछते हैं कि आखिर यह जैक्सन होल क्या है, तो उनकी सुविधा के लिए बता दें कि यूएस फेडरल रिजर्व के जो जर्मी पावेल हैं उनके हेड, वो अक्सर अपनी बैठक जैक्सन होल में करते हैं। ये अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत वैली है, बहुत ही नैसर्गिक है और उन्हें वो जगह पसंद है, इसी वजह से यूएस फेड की सारी बैठकों को लोग अब वो पर्यायवाची जैक्सन होल भी कह देते हैं, और वहां से कुछ अच्छी खबरें हो सकता है कि आए। खास तौर पर उदयन, अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें और एक आम निवेशक की बात हम हमेशा करते हैं मार्केट मंत्रा के इस मंच से, तो जिन्होंने अगर थोड़े लंबे समय के लिए पैसे लगाए हैं 3 से 5 साल के लिए, चाहे वो स्मॉल कैप हो या बिग कैप में लगाया हो उन्होंने लार्ज कैप शेयर्स में, उन्हें क्या अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस बढ़े हुए बाजार में या अभी बने रहना चाहिए?
देखिए हर्ष, हम जैसे लोगों का, हम लोग बहुत माइनॉरिटी में हैं, तो हम लोगों का मानना है कि आप जब निवेश करते हैं, एक जो रिटेल इन्वेस्टर है जैसे आप और मैं और इस प्रोग्राम को सुनने वाले श्रोता हैं, तो उनका जो निवेश है एक जरूरत या गोल के साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आप मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं और आप जानते हैं कि उसके लिए डाउन पेमेंट करनी है, आप लोन लेंगे आगे चल के, तो आपने कुछ जो निवेश, आपने कहा कि ये जो निवेश है ये मैं होम लोन घर को खरीदने के लिए अलग से रख रहा हूं, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज के लिए, ये उनके पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए, तो जब आप ईयरमार्क करते हैं एक निवेश को उसके साथ जोड़ देते हैं तो आपको ये मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि आप अपने जो लक्ष्य है उसके हिसाब से प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो इसलिए तब क्या होता है कि तब ये प्रॉफिट बुकिंग वाली जो बात हो रही है, जो कई लोग अपने जो प्रॉफिट बुकिंग वो एसआईपी में देखा जा रहा है कि कई लोग अपने एसआईपी से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट अगर बुकिंग करके आप बाहर चले जाते हैं फिर तो वो बिल्कुल ही सरासर गलत हो गया, क्योंकि आपकी आपके जो लक्ष्य है उसके लिए प्राप्ति के लिए आपने काम नहीं किया। पर अगर उसको उससे बाहर निकल के आप रीएलोकेट कर रहे हैं, रीबैलेंसिंग जिसे कहते हैं, जैसे आपने आपने थाली में कुछ खाना है और आपने कहा कि चलो कल हमने दाल ज्यादा हो जाएगा, सब्जी अलग किस्म की सब्जी हो गई, तो आपने थाली में चेंज किया जो मिक्स है, जो मिक्स चेंज करने वाली बात यहां पे इम्पोर्टेंट हो जाती है, ना कि बुक करके आप बाहर चले गए कुछ और उसको एक वेकेशन में आपने लगा दिया या कुछ खरीद लिया आपने। तो निवेश का जो है एक एक टारगेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से अगर करते हैं तो ऐसे समय में मिक्स चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ यहां पे ये बहुत ज्यादा चला गया एक्सेस में, जैसे स्मॉल कैप कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया और ये मेरे रिस्क जो है जोखिम, अगर कल गिर जाता है तो मेरे को रात की नींद नहीं चली जाएगी, तो फिर आपने उसके अमाउंट को कम करके आप लार्ज कैप पे लेके चले गए, तो ये देखना पड़ता है। पर ये कई लोग जो है ये इसको बहुत ज्यादा करते हैं हर वक्त। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में अगर निवेश कर रहे हैं, ये हर रोज आपको देखना नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को होता है, वो हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा भी इधर से उधर चेंज हो जाता है उसमें उनकी अर्निंग्स होती है। आपका अमाउंट बहुत कम है, इसलिए आपको साल में अगर आप एक बार देखें तो वो काफी है। हाँ, थोड़े से पैसे हमेशा आप जो प्रॉफिट बुक करते हैं जिसे मैं उसे एमिनेशन ड्राई पाउडर कहता हूं, कि छोटा मोटा अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, जो आपके मान लीजिए 100 रुपए का निवेश करके रखा है, 2-3% आपने वहां पर लगा दिया क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको लगता है ये बहुत अच्छा है, तो आपने उसके लिए रेडी रखा। नहीं तो बाकी SIP को रोकने का तो कोई कारण नहीं है। अगर आपने सोच के नहीं किया फिर तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक बगैर सोचे अगर कोई निवेश करता है तो फिर उसको अपने स्टेप्स को रिट्रेस करना पड़ता है। नहीं तो अगर आपने पहले से ही सोच के प्लान बना के चल रहे हैं फिर तो ये दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल। और रुपया के फ्रंट पर भी एक अच्छी खबर है, विदेशी मुद्रा बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़ा है, $1 की कीमत ₹83.79 रही है। डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान 0.07% की मामूली गिरावट के साथ 101.81 पर कारोबार कर रहा था।
रूपी हैज बीन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम उदयन एट अराउंड 83 रूपीज, व्हाट डज दिस से अबाउट द करेंसी?
वेल लालिमा, द कैच हियर इज मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडर्स डन इन डॉलर्स, ओके, सो समटाइम्स आवर रूपी एवर सिंस दिस पैंडेमिक एंड ऑल द एंसुइंग एक्शन हैपेंड, सो we were always expecting a challenge and it got challenged, rupee got challenged by the strength of the dollar. But if you look at other currencies, our performance has not been all that bad. Okay, it's pretty good. But it's against the dollar that our challenges, and that's the effectively the currency. But rupee is under quite a bit of pressure simply because of our trade numbers. There are periodic demands that come in. If there are periods of import surges, those things happen. So, and of course, we import edible oils and we import petroleum. Yes. So those are essentials that you cannot change them. We are a growing economy. We will be needing them. So rupee would continue to have to deal with these factors. It's not going to go away. Mm-hmm. We won't be able to push them under the carpet. The smart thing would be to make sure, which the RBI does, that the rupee's value against the dollar shouldn't move drastically in a short period of time. When it moves gradually, everybody in the ecosystem, or shall we say the economy, can adjust to it. When things happen suddenly, the whole economy or the entities in the economy, they find it difficult to adjust. So that is what we have to avoid.
And we do see that now we are trading with more than 20 countries in rupees. That also gives us a little more confidence.
Oh, yes. Oh, yes. And as the size of our economy increases, as we pursue economic diplomacy mm-hmm. smartly, we do trade agreements and other agreements, these things are going to keep going up. And, of course, our services exports are doing well, especially yes. in the IT space. Especially the data center bit. So those things might come and help us whenever things go a little, become a little difficult for us.
All right. Let's move on and take a look at Moody's report on CAPEX. Well, according to the Moody's rating report released today, as the investment cycle picks up momentum on the back of robust corporate earnings, Indian companies are expected to allocate $45 to $50 billion annually for capital expenditure over the next 2 years. Further, the report states, and I quote, CAPEX by corporate sectors in India and Indonesia will remain high over the next 2 to 3 years. Overall capacity utilization for the manufacturing sector in both countries is already quite high, while consumption continues to grow on the back of population growth and a favorable demographic profile, unquote. Companies in the automotive, metals and mining, technology, media and telecommunications sectors to account for around one-third of total capex, with investments of around $15 to $16 billion each year, the global rating agency expects. Modi states, companies in the oil and gas sector are expected to invest 60% of the total capex. What will support the earnings of these companies across sectors will be infrastructure spending, increasing domestic energy consumption, and rising demand for connectivity. On the drivers of capex, the rating agency reports that government's promotion of manufacturing as a basis for economic development and job creation will support capacity expansion and continued capex over the next few years. How significant is this Moody's rating report? How much importance do we give it? And there are many stories within this. How would you analyze it for us?
Albert? Yeah, this is something that's being expected. And it's very rightly seems to be analyzing, I mean, in my opinion, that a lot of it is going to come from the oil and gas sector. Because if you look at, even in our country, these are going to be the companies where most of the capex is going to happen. It's essential to fuel the growth, yeah. And in that sense, Indonesia and our country are, they seem to be mirroring each other. They're also going through an infrastructure boom, and all the areas that are being mentioned. I mean, it's pretty much the story. You see the same lot of roads and bullet train in Indonesia. Those things are happening. So it's pretty much similar growth stories are happening in India, Indonesia, and in North America. It's happening in Mexico.
और एफडीआई के फ्रंट पर भी एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि भारत लगातार इन्वेस्टर्स हेवन बना हुआ है. एफआईआईस तो लगा ही रहे हैं, साथ में निकालते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी भारत का बढ़ा है. देखते हैं ये रिपोर्ट. भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाला सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई 26.4% बढ़कर 22.5 बिलियन डॉलर हो गया है. पहली तिमाही में निवेश में उछाल के कारण शुद्ध निवेश में 6.9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि इसी अवधि में पिछले साल 4.7 बिलियन डॉलर थी, यानी कि एक ठीक ठाक उछाल रहा है. लगभग 80% सकल एफडीआई निवेश विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, संचार सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, बिजली और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में आया. रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, अमेरिका और बेल्जियम एफडीआई का 75% हिस्सा है. इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि भारत का निर्यात बास्केट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्पादों की तरफ ज्यादा अब झुक रहा है, जबकि पारंपरिक आभूषण, वस्त्र, चमड़ा उत्पाद और समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात लगातार कम हो रहा है. इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि सेवा क्षेत्रों, खासकर कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का निर्यात एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है. उदयन, ये जो आरबीआई का मासिक बुलेटिन है और इसमें जो एफडीआई पे बातें कही गई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक ट्रांजिशन का फेज हम देख रहे हैं. जो भारत की पारंपरिक निर्यात की वस्तुएं थीं, जहां से हमें निवेश आता था या जिसमें लोग निवेश करते थे, वहां से हटकर अब आप देखिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसमें ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इंजीनियरिंग के उत्पाद हैं, और जिस तरीके से हम अभी चिप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और भारत आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें, उसके हिसाब से देखें तो फ्यूचर में ये बास्केट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा.
बिल्कुल, और वो होना भी चाहिए. जैसे हर्ष जी, अगर आप देखें मरीन प्रोडक्ट्स जिसमें श्रिम्प एक्सपोर्ट, झींगा मछली की जो एक्सपोर्ट है, इनमें कई चीजें आ जाती थी. प्राइस के बेसिस पे आपको कम्पीट करना पड़ता था. फिर फाइटो सैनिटरी कंडीशंस हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में, एकदम से उन्होंने चेंज कर दिया, आपके एक्सपोर्ट्स इम्पैक्टेड हो गए. तो ये जब आप हायर वैल्यू एडेड एरियाज में जाते हैं जहां पर स्किल कॉम्पोनेंट ज्यादा होता है, तो आपके उसमें एक स्टिकीनेस, एक ठहराव मतलब जस्ट प्राइस या आपके करेंसी में चेंज की वजह से आपको कम्पीट करने में दिक्कत नहीं होती है, तो वो तो एक चेंज होना जरूरी था जो कि हो रहा है एंड वेरी वेलकम चेंज। दूसरा एक चेंज जो बहुत जरूरी है कि अलग हमारे जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं उसमें भी बदलाव की जरूरत है, कि अगर आप देखेंगे टॉप 10 जो हैं उसमें आज से 20 साल पहले और अब में अभी भी हमारे कुछ जो देश हैं ज्यादातर एक्सपोर्ट हमारे कुछ सिलेक्ट देशों में जाते हैं, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की हमें सख्त जरूरत है। और उसके लिए अब हमारी इकोनॉमी उस साइज में पहुंच गई है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करें और थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं तो ये रिजल्ट्स में वो डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा सप्लाई चेन या मार्केट डिस्ट्रप्शंस में होने पर क्या इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है।
लगभग $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हम बैठे हुए हैं, इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही 3री बनने वाले हैं, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। और आप देखिए कि जो भी निवेश हुआ है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, उसका 75% हिस्सा ये 5 कंट्री का नाम मैं फिर से गिन रहा हूं, सिंगापुर है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, अमेरिका है और बेल्जियम है, इन देशों से आया है। यानी कि अमेरिका भी अभी भारत को पहचान गया है कि भारत एक आर्थिक शक्ति तो है ही है, एक बेहतर डेस्टिनेशन है, और यहां जो हमारे सेवा क्षेत्र हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, खास करके इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, उसकी बहुत बड़ी डिमांड इन विकसित देशों में भी है।
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और हमें यह भी याद रखना पड़ेगा हर्ष जी कि हमारे इस ये जो एज अ डेस्टिनेशन हम दूसरों के साथ कम्पीट भी करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हम वियतनाम के साथ कम्पीट करते हैं, तो हमें ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, पर हमारे पास वो क्वालिफाइड मैन पावर भी चाहिए, तो हमारे जो स्कूल कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उनकी तादाद बढ़ने की जरूरत है, और उसमें जो वहां से जो आउटपुट निकलेगा वो भी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि हम दूसरे डेस्टिनेशन के साथ कम्पीट कर सकें। तो एंड टू एंड जब भी कोई प्रोजेक्ट लगाने आए तो उसको लगे कि हाँ यहां पर जल्दी से हम लगा सकते हैं, मार्केट में लेके जा सकते हैं, हमें मैन पावर भी मिलेगा, तो वो पूरा जो है अभी भी जो पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें काम अभी भी जारी रखना जरूरी है।
बिल्कुल, और एक नजर डालते हैं कि दुनिया के शेयर बाजारों ने कैसा किया लालिमा। सबसे पहले देखते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजार। 5 प्रमुख एशियाई बाजारों के सूचकांकों में से 3 आज बढ़त के साथ बंद हुए। जापान का निकेई 1.77% मजबूत रहा, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.83% की तेजी दिखाई दी, और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.44% की वृद्धि रही है। वहीं चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.94% की गिरावट दर्ज की गई, और हांगकांग का हैंगसेंग 0.33% की कमजोरी के साथ बंद हुआ। यूरोप के 3 प्रमुख शेयर बाजारों में से 2 आज नुकसान पर कारोबार अभी कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 0.69% नीचे था, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.07% फिसल कर काम कर रहा था, लेकिन फ्रांस का कैक 40 0.06% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमरीकी बाजारों का क्या हाल है?
जी जी हर्ष, आई लुक एट द यूएस मार्केट्स। वेल, यूएस इंडेक्सेस रजिस्टर्ड एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी यस्टरडे, ड्रिवन बाय अ स्ट्रांग सेशन इन यूरोपियन मार्केट्स एंड एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग्स रिपोर्ट फ्रॉम की यूएस रिटेलर्स। मेजर यूएस मार्केट्स वर ट्रेडिंग इन ग्रीन। द नैस्डैक कंपोजिट सर्ज्ड 1.39%, द एसएनपी 500 एडवांस्ड 0.97%, एंड द डाउ जोन्स industrial average added 0.58%. And a look at the oil prices as well now. Well, oil prices steadied today after falling for 2 straight sessions amid geopolitical concerns. The global oil benchmark Brent crude was up by 0.1% to $77.74 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI is also trading up 0.07% to $74.42 per barrel when reports last came in.
और क्रूड के साथ सोना चांदी देखना भी बहुत आवश्यक है। सर्राफा बाजार में आज जो सोना रहा वो बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। शाम 6:40 की हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। भारत में 24 कैरेट सोना 0.75% बढ़कर 72,290 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, यानी 10 ग्राम सोना 24 कैरेट का अगर खरीदेंगे तो उसको खरीदने के लिए आपको 72,290 रूपये देने पड़ेंगे। वहीं चांदी में भी 1.4% की बढ़त रही और 1 किलो चांदी खरीदने के लिए 85,900 रूपये देने की जरूरत थी। आज के मार्केट मंत्रा में इतना है। वहीं समय बता रहा है कि हमें कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। उदयन आप आए, आपने हम लोगों के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जी जी, थैंक यू हर्ष। यस, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसेस ट्रेड फर्म सेंसेक्स गेन्स 378 पॉइंट्स टू 80,803, निफ्टी एड्स 126 पॉइंट्स टू 24,699, ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर्जेस बाय 26.4% इन अप्रैल जून 2024, सेज आरबीआईज मंथली बुलेटिन, एंड मूडीज एक्सपेक्ट्स इंडियन कंपनीज टू एलोकेट 45 to 50 billion for capital expenditure for the next 2 years. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Friends, for now, it's goodbye from all of us.
Namaskar.